दि प्रिंट सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं इंद्रजीत आपको सुना रहा हूं प्रवीण स्वामी का लेख, जंग की तरफ बढ़ता अमेरिका, रिपब्लिकन का बटा खेमा विरोधियों को धुर दक्षिणपंथी आतंकवाद की ओर धकेल रहा। प्रवीण स्वामी दि प्रिंट के सिक्योरिटी एडिटर हैं। वह लिखते हैं, कहीं दूर से आती एक आवाज़ सुनाई दी, लिंच द एन। सामने तो कोई नज़र नहीं आया, लेकिन किसी ने न्यूयॉर्क के टेंडर लाइन जिले में एक लैम्प पोस्ट पर कुछ कपड़ा जरूर बांध दिया। फिर जो हुआ उसका ब्यौरा देते हुए अगस्त 1900 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि करीब 8 से 11 घंटे तक एट सेवेन्यू की तरफ आने और जाने वाली हर कार को भीड़ ने रोका और जिसमें कोई यन सवार मिला उसे बाहर खींच लिया गया। उन्हें मार पीट कर अधमरा तक कर दिया गया। स्थानीय पुलिस भी थोड़ी देर में घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन उसने हमलावरों को पकड़ने के लिए या तो ज़्यादा कोशिश नहीं की या फिर कतई कुछ किया ही नहीं। आज गाहे बगाहे अमेरिका की धुर दक्षिणपंथी छवि उभरने लगी है, जैसा कि अमूमन नहीं होता था। फिलहाल एक इलीट गोल्फ क्लब में थोड़ी अजीब सी बैठक सुर्खियों में है, जिसमें एक श्वेत वर्चस्ववादी और स्वघोषित इंसेल एक अफ्रीकी अमेरिकी रैप म्यूजिशियन जो एडॉल्फ हिटलर का प्रशंसक है और ऐसा मानता है कि यहूदी उसे सनकी घोषित करने की साजिश रच रहे हैं और बखेड़ा खड़ा करने वाली सेक्सुअल पॉलिटिक्स के साथ वापसी की कोशिश में जुटे अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति शामिल थे। दुनिया भर में और कहीं निश्चित तौर पर उन लोगों को छोड़कर जो इसे जीने मरने का सवाल बनाने की निंदा करते हैं या हंसी मजाक का विषय है, लेकिन लगता है कि अमेरिका की दक्षिणपंथी राजनीति में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। विश्व व्यवस्था अन्य बातों के साथ साथ अमेरिका के राजनीतिक जीवन को लेकर लगाए जाने वाले कयासों पर टिकी है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का पिछले सप्ताह अपने फ्लोरिडा स्थित मारे-लागो रिजॉर्ट में एक अजीबोगरीब बैठक करने को हल्के में लेना नासमझी होगी। ट्रंप के दबदबे का आधार बने धुर दक्षिणपंथी राजनीतिक संगठन दरअसल जनसांख्यिकी समीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब्रजन और शहरीकरण के साथ साथ उदार विचारधारा के प्रति झुकाव रखने वाली नई पीढ़ी के बढ़ने से रिपब्लिकन के टेक्सास, एरिजोना और जॉर्जी जैसे भरोसेमंद गढ़ ढहते नजर आ रहे हैं। युवा शहरी उदारवादियों का बढ़ता प्रभाव जो हालिया मध्यावधि चुनाव में दक्षिण पंथियों के वर्चस्व वाले राज्यों में डेमोक्रेट्स के अप्रत्याशित ढंग से बेहतरीन प्रदर्शन से साफ दिखता है, बदलाव के लिए बाध्य करने वाला है। पत्रकार डेरेक थॉम्सन का मानना है कि रिपब्लिकन को जेनोफोबिया पर रूढ़िवादी भावनाओं को हवा देना बंद करना होगा और न्यू साउथ बने वोट बैंक को साधने के लिए अधिक आक्रामक ढंग से कंपटीशन करना होगा, जिसका मतलब है उदारवादियों, अश्वेत वोटर्स और आप्रवासियों की पार्टी बनना। धुर दक्षिणपंथियों, कट्टरपंथी ईसाइयों, श्वेत वर्चस्ववादियों, यहूदी विरोधियों, उत्तरजीवितावादियों आदि के लिए इसका मतलब है दशकों की मेहनत के बाद जो राजनीतिक प्रभाव कायम किया है उसे ही गंवा देना। द राइट को उम्मीद थी कि ट्रंप एक नई सहस्राब्दी की शुरुआत करेंगे जिसमें अमेरिका की महानता ईश्वर और श्वेत वर्चस्ववाद के इर्द गिर्द केंद्रित होगी, लेकिन यह सपना टूटता जा रहा है। यह राजनीतिक हार कैसे नए खतरे को जन्म दे सकती है, यह आक्रामक विचारधारा वाले लोगों के आतंकवाद की ओर रुख करने से जाहिर भी होता है। लोन उल्फ को सिर्फ जिहादी सोच का नतीजा नहीं कहा जा सकता। नौनाजी समूह आल्ट राइट नेशन सदस्य सीन उर्मांस्की ने एक बस स्टॉप पर खड़े रिचर्ड कॉलिंस को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि नए सेकंड लेफ्टिनेंट बने रिचर्ड ने अपनी जगह से हटकर उसे रास्ता नहीं दिया था। जेरेमी क्रिश्चियन ने पोर्टलैंड में एक ट्रेन में दो लोगों की हत्या कर दी जो उसे हिजाब पहने एक महिला का अपमान करने से रोक रहे थे। संघीय जांच ब्यूरो FBI के एजेंट अक्सर ही धुर दक्षिणपंथी लोगों को बम बनाने के तरीके बताने वाले पर्चे बांटते और धार्मिक और नस्ली अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर हमलों की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार करते रहते हैं। क्रिमिनोलॉजिस्ट मैथ्यू स्विनी और अर्लियर पर्लगर के मुताबिक अमेरिका में धुर दक्षिणपंथियों का आतंकवाद अमूमन आवेग में आकर अंजाम दी गई घटनाओं से जुड़ा है, जिसके लिए अक्सर कोई खास योजना नहीं बनाई जाती और इसे अंजाम देने वाले अपराधी ना तो किसी सक्रिय समूह से जुड़े होते हैं और ना ही उनकी कोई आपराधिक या हिंसक पृष्ठभूमि होती है। हालांकि चिंता करने के काफ़ी कारण हैं। कैथलीन बेलेओ ने अमेरिकी सेना के अंदर आतंकवाद को लेकर शानदार शोध पर आधारित अपनी किताब में लिखा है कि अमेरिका के लंबे समय तक चलने वाले युद्धों से नाराज पूर्व सैनिकों के बीच एक अलग ही तरह का ब्रदरहुड जन्मा, जिनकी राय में एक भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था ने उन्हें जीत से वंचित कर दिया। द ओथ कीपर्स जैसे संगठनों का दावा है कि बंदूकों और ट्रेनिंग सेल को सैन्य रणनीति में इस्तेमाल करके अमेरिका ने एक तरह से अपने नागरिकों के अधिकारों को सीमित करने की साजिश ही रची है। मानव विज्ञानी जान कोनर बताते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार ने भी पूर्व सैनिकों में इसी तरह के ब्रदरहुड को जन्म दिया था और वे नाजीवाद की ओर आकृष्ट हुए। उनमें एक तरह का उन्माद चरम पर था, जिसमें वह खुद को बर्बरता के खिलाफ लड़ने वाला आखिरी सिपाही मानते थे। विद्वान एरी पेरिलिगर ने लिखा है, एक दूसरी प्रवृत्ति उन उन्मादी लोगों से बनती है जो मानते हैं कि लेफ्ट विंग की तरफ से अमेरिका के ईसाई बहुल स्वरूप को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। एक प्रभावशाली फार राइट ऑनलाइन नेटवर्क पर एक पोस्ट में एक नेता, हमारे स्कूलों से प्रार्थना हटाने, हमारी सरकारी संपत्ति से क्रिसमस के दृश्यों को हटाने, कई म्यूनिसिपल फ्लैग और लोगों से क्रॉस या किसी भी धार्मिक प्रतीकों को हटाने की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। पत्रकार जेम्स पोक का तर्क है कि अप्रभावित एलीट न्यूराइट को भी इन समूहों में जोड़ना चाहिए। मसलन दुनिया में अनाम ब्रोईस ट्विटर पोस्टर, ऑनलाइन फिलासफर कलाकार और अनाकार सिनेस्टर को असंतुष्ट नव प्रतिक्रियावादी उत्तर वामपंथी या हेटरोडॉक्स जैसे मुक्त तत्वों के तौर पर जाना जाता है। यूरोपीय राजशाही से लेकर बमबारी करने वाले टेड कॉगजिनस्की तक अनेक तरह के इन्फ्लुएंसर्स से प्रभावित ये समूह मानता है कि व्यक्तिवादी उदारवादी विचारधारा, नौकरशाह सरकारों का बढ़ना और बड़े पैमाने पर तकनीक का आना, यह सब कुल मिलाकर एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो कभी अत्याचारी, अराजक और मूल्य आधारित व्यवस्था और नैतिकता से रहित थी। दक्षिणपंथी श्वेत मतदाताओं की चिंताओं को समझने के लिए किसी खास कल्पना शक्ति की जरूरत नहीं है। इस सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका एक श्वेत बहुसंख्यक देश से एक ऐसे देश में बदल जाएगा जहां गोरे केवल सबसे बड़ा एकल जाति समूह होंगे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 18 से 29 आयु वर्ग वाले समूह के लिए तो टिपिंग पॉइंट बहुत जल्द ही आ जाएगा, शायद इस दशक के भीतर ही। हालांकि विविधता को अपनाने में अमेरिका कभी भी पीछे नहीं रहा है, लेकिन कुछ लोगों का, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण समुदायों की नज़र में, यह बदलाव कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से हो रहे हैं। अमेरिका में पहले भी ऐसा होता रहा है। 1850 के दशक से 1870 के दशक तक, 1915 से 1920 के दशक तक, 1950 से सिविल राइट मूवमेंट तक, अमेरिका के श्वेत राष्ट्रवादी हमेशा ही समानता को लेकर अश्वेतों के दावों को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर हिंसा का सहारा लेते रहे हैं। 19वीं शताब्दी के फ्रांसीसी राजनयिक एलेक्सिस डी टोकेबिले ने लिखा था, लगभग उन सभी राज्यों जहां गुलामी की प्रथा खत्म कर दी गई में यन को मताधिकार तो मिल गए, लेकिन उनके लिए वोटिंग का मतलब अपनी जान जोखिम में डालना है। उन्होंने आगे बताया, उन्हें श्वेत लोगों की तरह पूजा करने की अनुमति है, लेकिन उन्हें एक ही धार्मिक स्थल पर पूजा नहीं करनी चाहिए। डेसमंड किंग और स्टीफन टक जैसे विद्वानों का अध्ययन बताता है कि लिबरल नॉर्थ में भी चीज़ें अलग नहीं थीं। उदाहरण के तौर पर जनसंख्या समायोजित करने के हालातों के बारे में बात करें तो अश्वेत अमेरिकियों को साउथ से इतर भी लिंच किए जाने की बहुत अधिक जोखिम था। स्कॉलर रोजर्स स्मिथ और डेसमंड किंग कहते हैं कि ट्रंप ने अपने समर्थकों से श्वेतों के हितों के संरक्षण का वादा किया था। उन्होंने जिस तरह के कदम उठाने की बात कही, उनमें स्वैच्छिक पुलिसिंग, सिविल राइट्स पर अमल घटाना और मताधिकार व आप्रवासन सीमित करना आदि शामिल थे। ट्रंप अपने वादे के मुताबिक न केवल संबंधित कार्यक्रमों पर वीटो करते रहे, बल्कि ऐसे सक्रिय उपायों पर जोर देते रहे जिन्हें कथित असमानताओं को दूर करने के बजाय श्वेतों के पक्ष में माना गया। गौरतलब है कि नस्ली संघर्ष कमजोर पड़ जाने के डर से ही अमेरिका ने राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन की अगुवाई में चलने का फैसला किया था, जो कि अपने इरादों और धारणाओं के खिलाफ समानता पर जोर देते रहे थे। हालांकि इसके फायदे हुए, लेकिन आस पड़ोस और शहरों में अभी भी एक विभाजन नजर आता है। हर तीसरे अश्वेत परिवार के पास कोई संपत्ति नहीं है या वे कर्ज के बोझ तले दबे हैं, और तीन अश्वेत बच्चों में से एक गरीबी में जीता है। फ्रैंक एडवर्ड्स हेडविग ली और माइकल एस्पोसिटो ने यह तथ्य भी सामने रखा कि श्वेतों की तुलना में अश्वेत पुरुषों और लड़कों को पुलिस द्वारा मार गिराए जाने की संभावना दोगुनी रहती है। अमेरिका अब जब चीन और रूस के साथ बड़ी रणनीतिक कंपटीशन में उलझा है, उसके लिए अपनी इन समस्याओं का समाधान निकालना बहुत ही जरूरी है, लेकिन ऐसा करने पर उसे श्वेतों का कोप भाजन झेलना पड़ सकता है। मध्य अवधि चुनाव में भले ही अमेरिकी राजनीति में अति आतंकवादी तत्वों की हार दिखी हो, लेकिन मारे लागो की बैठक बताती है कि अमेरिकी लोकतंत्र में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा रिपब्लिकन आंदोलन एक दोराहे पर पहुंचकर विभाजित नजर आ रहा है, जिसमें एक ओर जनसंख्या के आंकड़ों की हकीकत के साथ कदम ताल करने वाले मध्यमार्गी हैं, तो दूसरी तरफ उनके विरोधी जो देश में अति आतंकवादी तत्वों की भावनाओं को मुखर बनाने के इच्छुक हैं। अमेरिकी लोकतंत्र का भाग्य इनके संघर्ष से तय होने वाली जीत हार पर ही निर्भर करेगा। द प्रिंट सुप्रभात के इस अंक को सुनने के लिए धन्यवाद। एक नए अंक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।